السلام علیکم لسنرز، انا الیاس کے ناول دھڑکنوں کا امین کا ایپیسوڈ 1 تو میں شروع کرتی ہوں۔ شدید ٹریفک جیم میں وہ بری طرح پھنسے تھے۔ اوف یار، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ کوفت زدہ لہجے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فرحان سے مخاطب ہوئی۔ فرحان نے ایک نظر اس کے بیزار چہرے پر ڈالی۔ انہیں کورٹ کے لیے دیر ہو رہی تھی، اسی لمحے ٹریفک چل پڑی۔ اوف شکر، آنکھیں تشکر سے بند کر کے جیسے ہی کھولی نظر سیدھی دائیں جانب سے غلط موڑ کاٹ کر آنے والی گاڑی پر پڑی۔ غلط موڑ کاٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے صحیح راستے پر جانے والے ایک موٹر سائیکل سوار سے اس گاڑی کی بری طرح ٹکر ہوئی۔ وہ تو اس موٹر سائیکل والے کی قسمت اچھی تھی کہ موٹر سائیکل تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گری، وہ خود بھی گرا مگر زندگی بچ گئی۔ یک دم بھیڑ لگ گئی۔ روکو روکو، اس سے تو میں بتاتی ہوں، وہ فرحان سے کہتے ہوئے گاڑی رکتے ہی مرنے مارنے والے انداز میں گاڑی سے نکلی۔ تیز قدم وہاں رکے جہاں گاڑی والا موٹر سائیکل سوار کو سخت سست سناتا، یہ باور کروا رہا تھا کہ گلتی موٹر سائیکل والے کی ہے۔ او بھائی صاحب، یماما ماتھے پر تیوری چڑھائے گاڑی والے سے مخاطب ہوئی۔ غلط موڑ کاٹ کر خود آئے اور اسے غریب جان کر اپنی دولت کا روب چھاڑ رہے ہو، وہ آستینے اوپر کرتی گرائی۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے سب ایک نسوانی مگر کڑک دار آواز پر لمحہ بھر کو گھنگ رہ گئے۔ دھان پان سی ماما کی گرجدار آواز نے سب کو ساکت کیا۔ ایکسکیوز می میم، آپ اس معاملے سے ذرا دور ہی رہیں، گھاڑی والا شخص نہایت تڑخ کر بولا۔ کیوں دور رہوں؟ باپ کی سڑک ہے، دور رہو۔ اس کی بات پر پھر سے وہاں خاموشی چھائی۔ تم جیسوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے مجبور لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور کہنے کو یہ ملتا ہے کہ بائک والے تو بائک چلاتے نہیں، اڑاتے ہیں۔ ہٹو، گاڑی کا نمبر نوٹ کرو، ماتھے پر بل ڈالے اسے ایک جانب کرتی نمبر نوٹ کرنے لگی۔ وہ حیران اس کی کاروائی دیکھ رہا تھا، بلکہ سبھی حیران تھے۔ تم سے اگلی ملاقات اب تھانے میں ہوگی، اسے گھوری ڈال کر دھمکی دینے سے باس نہیں آئی۔ بھائی تم اپنے گھر جاؤ، ایسوں کو سیدھا کرنا مجھے خوب آتا ہے، بائک والے لڑکے سے مخاطب ہوئی جو اب بھیڑ ہٹا کر اپنی بائک کی جانب بڑھا تھا۔ باقی سب حیران تھے۔ او مس، نمبر کیوں نوٹ کیا میری گاڑی کا؟ تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ یا ماما کا راستہ روکتے ہوئے وہ غصے میں بولا۔ پتا تو تمہیں نہیں کہ میں کون ہوں، کورٹ کچہری میں تم جیسے ہزاروں دھمکی لگاتے ہیں، ایک کو بھی بخشتی نہیں، تم کیا چیز ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں لائے بغیر گھاڑی کی جانب بڑھی۔ تم کب باز آؤ گی ان حرکتوں سے؟ فرحان اپنے ساتھ والی سیٹ پر اسے بیٹھتے دیکھ کر کڑے تیوروں سے پوچھنے لگا۔ کبھی نہیں، وہ مزے سے چہرہ تھوڑا سا اٹھا کر بولی۔ سنو فرحان، میں نے وکالت کی ڈگری اس لیے حاصل نہیں کی کہ بس کورٹ کچہری یا پھر اپنے آفس میں بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے حل کرواؤں۔ فرحان کے گھاڑی چلاتے ہی اس کی بھی زبان فراٹے بھرنے لگی۔ ہم جس شعبے میں ہیں اس کا مطلب ہے لوگوں میں انصاف قائم کرنا، اور انصاف صرف پیسہ دے کر ہی بانٹنا نہیں ہے۔ مجھے جہاں جہاں بہتر لگا میں اس انصاف کو پھیلاؤں گی۔ ونڈ سکرین کے پارٹ دیکھتے اس کے لہجے میں جو درد تھا وہ فرحان سے چھپا نہیں رہ سکا۔ اسے اپنی یہ دوست بہت عزیز تھی، بلکہ عزیز نہیں، اس کے لیے بہت خاص فیلنگز اس کے دل میں تھی، جنہیں یہ ماما ہر مرتبہ چھٹلانے پر تلی رہتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے سب پروفز جمع کر لیے ہیں؟ فرحان اسے زیادہ دیر اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا جو اس کے چہرے سے اس لمحے حویدہ تھی۔ ہاں، اس مرتبہ اس گھٹیا شخص کو چھوڑنا نہیں، ایسی عبرتناک سزا دلوانی ہے کہ اس کی سات پشتیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ انشاءاللہ اس بار یہ نہیں بچے گا، فرحان نے بھی صدق دل سے دعا کی۔ قیدیوں کی مخصوص گھاڑی میں اس لمحے بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قیدی ایک تھا جبکہ پولیس کے 8 اہلکار بیٹھے تھے۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بھی وہ اس قدر آرام اور سکون سے بیٹھا تھا جیسے اسے ڈیتھ سیل کی جانب نہیں بلکہ اس کی بارات پر لے جا رہے تھے۔ ایک مخصوص شرارتی مسکراہٹ مسلسل اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سامنے بیٹھے دو اہلکار اس کے جھکے سر کو خوشمکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کندھوں تک آتے لمبے بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ بھاری بھرکم داڑھی और मूंछों में मुस्कुराते लब पुलिस अहलकारों को तैश दिला रहे थे। उनके सामने बैठा शख्स कोई आम गुंडा मवाली नहीं था, खतरनाक दहशतगर्द शहनशाह था, जिसको 15 दिन से पुलिस ने कैद कर रखा था। मगर ये कोई पहली बार नहीं था, बहुत बार उसे कैद किया और हर बार वो बगैर वकील के इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, कुछ ना कुछ ऐसा घड़ी के साथ करता कि सबकी आंखों में धूल झोंक कर फरार हो जाता। अब की बार पुलिस ने उसे पकड़कर सीधा डेथ सेल की जान रवाना की और उसके साथ 8 पुलिस अहलकार भेजे ताकि इस बार फरार की कोई सूरत ना बन सके। घाड़ी ने जैसे ही शहर से निकलकर वीरान रास्ता अपनाया, पुलिस अहलकार और चुकन्ना होकर बैठे। शहनशाह ने अब होले से सर नीचे किए हुए ही गुनगुनाना शुरू किया, अबे चुप कर, तेरी बारात लेकर नहीं जा रहे। उसके साथ दाएं जाने बैठे पुलिस अहलकार ने एक थप उसकी कमर पर रसीद की। शहनशाह होले से मुस्कुराया, नजरें मुसलसल नीचे झुकी थी, गुनगुनाहट बंद हुई। शहनशाह ने उसी तरह दोबारा गुनगुनाते हुए सामने बैठे अहलकार को नजरें उठाकर देखा। चमकती सी खूबसूरत आंखों में से शरारत टपक रही थी। पुलिस अहलकार उसके यूं खुद को टुकटुकी बांध कर देखने पर गड़बड़ाया। इसी असना में शहनशाह ने उसे आंख मारी, वो और गड़बड़ाया। यकदम घाड़ी हिचकोले खाती डोलने लगी, अबे क्या कर रहा है पीछे बैठा एक अहलकार खुद को संभालते हुए चिल्लाया। अभी वो संभल भी ना पाए थे कि एक घाड़ी जन से उनके करीब से गुजरी और बेतहाशा धुआं पुलिस की घाड़ी के आसपास बिखरा। लम्हों में उनकी आंखों और गले में वो धुआं भरना शुरू हुआ। बेतहाशा खांसी छिड़ी, किसी को उस गुंडे का होश ना रहा जिसे उन्होंने बाहिफाजत डेथ सेल पहुंचाना था। सबको अपनी अपनी पड़ गई। घाड़ी से भागते हुए वो उतरे और ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां वो धुआं ना हो। तबीयत संभली तो एक अफसर को शहनशाह का ख्याल आया, अबे ओ, उसने पास खड़े दो मातहतों को एक साथ थप्पड़ सीध की। वो गुंडा कहां दफान हो गया, वो गुर्राया, सर जी यही तो था, घाड़ी में ही बंधा होगा, उसका एक हाथ तो हथकड़ी के साथ हमने घाड़ी से बांध दिया था जिस वक्त हम उतरे हैं, तब अपना होश कहां था कि उसे खोलकर उतारते। एक ने वजाहत दी, सर जी वो वही होगा, दूसरे ने तसल्ली दी, जबकि अफसर उन्हें घूर कर घाड़ी की जानिब तेजी से बढ़ा और वही हुआ जिसका उसे शक गुजरा था। वहां शहनशाह की जगह खुली हथकड़ी लटक रही थी। फिर भाग निकला कमीना, उसने गुस्से से दांत किचकिचाकर एक दो गालियां भी उसे दे डाली क्योंकि उसे अपनी मुतवक्का बेइज्जती होम मिनिस्टर के हाथों होती नजर आ रही थी जिसकी इमा पर उन्होंने शहनशाह को पकड़ा था। अब रोज सर पकड़ कर नहीं है वो, बाकी सब भी जैसे ही घाड़ी की जानिब आए वो अफसर घाड़ी के दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर बोला। सब मुंह लटकाए खड़े थे, इस वक्त शदीद मसरूफियत का आलम था। कुछ देर में ही उसे केस के सिलसिले में कोर्ट पहुंचना था। तेजी से हाथ चलाते वो सब सबूत जिन्हें उसने सफात पर उतार रखा था उन्हें इकट्ठा करके फाइल में तरतीब से रखती जा रही थी। कल ही सरताज मलिक के खिलाफ उसने बहुत से सबूत इकट्ठे किए थे। मोबाइल पर होने वाली बेल ने उसके काम में बुरी तरह खलल डाला। फाइल में सब सफहात रखे जा चुके थे। उसने फाइल उठाकर सीने से लगाई और एक हाथ से बैग उठाकर कंधे पर डाला और फिर इसी हाथ से फोन पर आने वाली कॉल को यस करके कान से लगाती तेजी से ऑफिस से बाहर निकली। हेलो, उसकी मीठी आवाज ने दूसरी जानिब जैसे आग लगा दी। बात सुन, तू जितनी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रही है तू जानती नहीं मुझे। अभी गाली सुनकर जो उसका मीटर आउट होने लगा था अगली बात सुनकर एतदाल पर वापस आया। अच्छा क्या करोगे, अगवा करोगे? तुम जैसे बुजदिल और हराम पैसों पर पलने वाले और कर ही क्या सकते हैं, उसका ठंडा मगर जहर हुंद लहजा सरताज मलिक को मजीद आग बगोला कर गया। जब तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा मेरे पालत नोच खाएंगे तब पूछूंगा कौन सी बहादुरी और कहां की बहादुरी। उसने फिर से अपने खटिया अंदाज में उसे धमकाया, अरे जाओ अदालत में आकर बात करो, ये गीदड़ भभकियां मुझ पर असर करने वाली नहीं, तुम जैसे कमीनों के लिए ही ये डिग्री हासिल की है, तुम्हें और तुम्हारे सारे खानदान को तुम्हारे अंजाम तक ना पहुंचाया ना तो उसी दिन इस डिग्री को आग लगा दूंगी। उसका बर्फीला और नडर लहजा चंद पल के लिए सरताज मलिक को खामोश करवा गया। यमामा ने उसकी मजीद बोलने से पहले फोन बंद किया। ना उसका तनफ्फुस तेज चल रहा था ना चेहरे पर किसी दुरुस्तगी के आसार थे। पुरसुकून चेहरा लिए वो फरहान के साथ घड़ी में बैठी कोर्ट की जानिब रवां दवां थी। इस कमीनी को छोड़ूंगा नहीं मैं, गुस्से से अपना फोन मेज पर पटकते वो हाथों की उंगलियां चटखाने लगा। तुमने पता करवाया है उसका बैकग्राउंड? अपने सामने खड़े मैनेजर को उसी गुस्सीले अंदाज में पूछा। जी सर, आगे पीछे कोई नहीं है, उसका यतीम खाने कौन छोड़कर गया ये भी नहीं पता, बस इतना मालूम हुआ है। हमारे गांव की है मगर किसकी औलाद है कोई कागजात नहीं है, बाप के नाम की जगह भी यतीम खाने के मालिक ने उस फैमिली का नाम लिखा है जो उससे स्पॉन्सर करती है, बस और कोई डिटेल नहीं है उसकी। मैनेजर ने सारी मालूमात एक ही सांस में सुना डाली। उसने गहरा सांस लिया। चंद दिन ही हुए थे इस लड़की को सरताज मलिक के खिलाफ केस शुरू किए, जिसमें पहले ये मामा ने उसके नजायज असासों पर अटैक किया, फिर उसी के गांव में होने वाली बर्बरियत के बेशुमार किस्सों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। कहीं पर लड़कियों को अगवा करके उनके साथ ज्यादती के किस्से थे तो किसी की जमीन पर नाजायज कब्जे की कहानी, कहीं पर गांव के लोगों की जमीनों पर नाजायज मलकियत और नाजायज टैक्स के मसले थे तो वहीं उनमें से किसी के आवाज उठा लेने पर उसे अजियतनाक मौत मारने के वाकयात। सरताज मलिक को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इस लड़की के पास ये सब सबूत इकट्ठे हुए। शुरू शुरू में उसने टीवी चैनल्स की मदद से उसके खिलाफ बनाई गई वीडियोस को आम करने की कोशिश की, मगर बहुत से चैनल्स ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो होम मिनिस्टर के खिलाफ ये सब नहीं चला सकते। वहां से मायूस होकर उसने अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाया। ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल करके सब वीडियोस आम की, मगर सरताज मलिक के पालतू लोगों ने वहां भी उसे जीने ना दिया और फिर उसके अकाउंट्स बारी बारी हैक करना शुरू किए। इन्हीं दिनों जब मुल्क में हुकूमत बदलते ही नाजायज जायदादें रखने वालों की पकड़ धक्कड़ शुरू हुई, ये मामा को गोया मौका मिल गया। उसने कोर्ट में सरताज मलिक के खिलाफ केस शुरू करवा दिया। वो नहीं जानती थी कि कैसे और किसने जजों का साथ दिया, मगर सरताज मलिक के खिलाफ केस शुरू हो गया और साथ ही उसे केस चलने तक उसकी सीट से बरतरफ कर दिया गया। उसने बथेरे हाथ पांव मारे, मुख्तलिफ गुमनाम कॉल्स करके कि मामा को धमकियां दी। ना सिर्फ ये बल्कि उसके फ्लैट पर उसकी गैर मौजूदगी में बंदे भेजकर उसकी हर चीज को तोड़ फोड़ कर रख दिया, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटी। फरहान ना सिर्फ उसका दोस्त था बल्कि उसी फैमिली का सपूत था जो उसे बचपन से अब तक स्पॉन्सर कर रहे थे। उसने भी बहुत समझाया कि वो अपनी जान को इस कदर खतरे में ना डाले, मगर यमामा के सर पर एक ही धुन सवार थी, सरताज मलिक की पूरी फैमिली को जेल में देखने की। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, पिछले आधे घंटे से शम्स उसका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो था कि एक अजीब जुनून उस पर सवार था। मैं उसकी बोटियां उसी के पालतू कुत्तों को खिलाऊंगा, क्या समझकर उसने धमकी दी है। लाल अंगारा आंखें सामने दीवार को देख रही थी, चेहरे की रगे तनी हुई थी। मेरी तरफ देखो नायल, अब की बार उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब करना चाहा। जब जब वो गुस्से में आता था वो इसी तरह काबू करते थे, इस वक्त नहीं, वो इनकारी हुआ। नायल, उन्होंने बिल आखिर जबरदस्ती उसका रुख अपनी जानिब करके दोनों हाथों में चेहरा पकड़कर जबरदस्ती उसका रुख अपनी जानिब किया। उसने चेहरा तो उनके सामने कर लिया मगर आंखें बंद कर ली। वो उन्हें छोटा सा बच्चा लगा, वो ऐसे ही करता था जब उसे पता चलता शम्स उसके गुस्से को जेर कर लेंगे, वो आंखें बंद कर लेता। नायल, आंखें खोलो, अब की बार उन्होंने उसके चेहरे को झटका दिया। बिल आखिर हमेशा की तरह उसे हार माननी पड़ी। जब जब तुम अपनी अकल पर अपने जज्बात को हावी करते हो सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, उसकी आंखों में देखकर वो उससे बहुत कुछ बावर करवा रहे थे। उसका गुस्सा यकलख्त खत्म हुआ था और हर बार ऐसा होता, न जाने उनकी आंखों में क्या जादू था या क्या मोहब्बत थी कि नायल जब गुस्से की हालत में उनकी जानिब देख लेता सारा गुस्सा खत्म हो जाता। वो मेरा इस दुनिया में वाहिद रिश्ता है, उसकी आंखों की बेबसी उन्होंने अपने दिल पर महसूस की, मैं जानता हूं, इसीलिए तुम्हें अकल से काम लेना है, जज्बात से नहीं, वरना उसे भी खो दोगे। उनकी बात पर उसका दर्द इंतहाओं को छू गया। कर्ब से उसने आंखें चंद लम्हों के लिए बंद की। शम्स ने भड़कर उसकी रोशन पेशानी चूम ली। तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुम्हें इस तरह इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता, क्या मैंने इतने साल तुम्हें यही सिखाया है? उनकी बात पर उसने आंखें खोलकर अपनी काली गहरी आंखों से उन्हें देखा नहीं। जब्त से वो बमुश्किल यही कह सका, जो मान उन्हें उस पर था तो वो कैसे इस मान को तोड़ देता। तो बस फिर खुद को तैयार करो एक नई जंग के लिए। तुम्हारे लिए मैं जितने पापड़ बेलता हूं, किसी को खबर भी हो गई ना तो मुझे और मेरे कारिंदों को अंदर डाल देंगे। उनकी बात पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी। मैं कभी उसे नजदीक से देख पाऊंगा? उसका जहन अभी भी उसी में अटका हुआ था। इंशाल्लाह बहुत जल्द, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं मौका देखते ही उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिक्र मत करो। जितनी मुझे तुम्हारी फिक्र है उतनी ही तुमसे जुड़ी उस हस्ती की भी फिक्र है, मगर तुम्हें वादा करना होगा कि जज्बात नहीं अकलमंदी से काम लोगे। अब वो उसके चेहरे से हाथ हटा चुके थे, वो भी सीधा होकर अस्पात में सर हिलाकर रह गया। तुम तो मेरे शेर हो, मेरे चीते हो, फिर ये गधों वाली हरकतों पर क्यों उतर आए? अब वो उसे अच्छी तरह लताड़ रहे थे। उसने हुफकी से उन्हें देखा और फिर अपनी जानदार मुस्कुराहट की छप दिखलाई। जज्बात भड़े भड़ों को गधा बना देते हैं सर। उसकी बात पर शम्स ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे फिर से अपने साथ लिपटाया। वो उन्हें बेहद प्यारा था, एक ही तो औलाद थी उनकी। अल्लाह ने किसी मौजजे के तहत उन्हें नायल नवाजा था, वो कैसे उसे तकलीफ में देखते। ये लड़की मेरे हाथों नहीं बचेगी। सरताज का बेटा गुस्से से भरा घर में दाखिल हुआ। मैं आइंदा आपकी किसी पेशी पर नहीं जाऊंगा, बेइज्जत करने के लिए मैं ही रह गया हूं। सरताज के बेड के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठा वो बाप से तिनक कर बोला, हुआ क्या है? वो हैरान परेशान उसे गुस्से से बल खाते देख रहा था। खुद आरामदेह अंदाज में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा था। आपने उसे आज फिर सुबह कॉल की थी? वो बाप की बात का जवाब देने की बजाय उससे इस्तफसार कर रहा था। हाँ, मगर मैंने किसी और नंबर से कॉल की थी, वो बेटे की बात पर चौंका। आप जितने मर्जी नंबर बदल लें, वो सबूत उठाकर अदालत में पेश कर देती है, न जाने कहां तक उसकी पहुंच है, सब कॉल्स का डेटा तक निकलवाल कर लाती है। आप अपने साथ हमें भी हवालात की हवा खिलवाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी फ्रांस की सीट्स बुक करवाएं, मैं आपके केस तक वही रहूंगा, वो हट धर्मी से बोला। सरताज उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। बाप को इस सिचुएशन में छोड़कर तुम्हें सुकून की पड़ी हुई है? अरे तुम लोगों के लिए ही ये सब दो नंबरियां की थी, वो अफसोस से बेटे को देखते हुए बोला। तो हमने कहा था कि हमें हराम की आदत डाले, और वैसे भी आपने भी बहुत अयाशियां की हैं। मम्मी की डेथ के बाद कौन सी ऐसी यहाँ की मॉडल है जिस पर आपने हाथ ना साफ किए हों? और मुफ्त में तो वो आपको अपने जलवे दिखाने नहीं आती, भारी भारी मुआवजे लेती हैं। वो आज अपने ही बाप को आईना दिखा रहा था। बकवास मत करो, दफा हो जाओ, मैं खुद ही निबट लूंगा। सच कब किसी को हजम हुआ है? सरताज भी बेटे के मुंह से निकलने वाला सच हजम नहीं कर पाया। मैं सिर्फ एक सूरत में यहां रहूंगा, आज जिस तरह उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है उसे इसकी कड़ी सजा मैं दूंगा, मगर उसे यहां लाने का बंदोबस्त आप करेंगे। बाप की टेबल पर धरे शराब के ग्लास को देखते हुए वो दांत के चिकचा कर बोला, ले आऊंगा, फिक्र क्यों करते हो? आज तक तुम लोगों की कोई बात टाली है? मगर इतना गरम गरम खाने की जरूरत नहीं, अभी सब मीडिया जर्नलिस्ट और एनजीओ तक उसके साथ मिले हुए हैं। पहले उनको हटाऊंगा, फिर उस तक भी पहुंचेंगे। उसका पुरेसरार लहजा वकार को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। मोबाइल पर बजने वाली कॉल की आवाज पर वो चौंका। हाँ समी, कैसे हो? वो अपने किसी दोस्त से गुफ्तगू में मसरूफ था। हाँ यार आ जाओ, वैसे भी इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, कहीं बाहर नहीं आ सकता। बातें करता हुआ वो सरताज के कमरे से बाहर आ गया। तू आएगा तो फिर ही तफसील बताऊंगा, दूसरी जानिब से यकीन नन उसके मूड की खराबी का पूछा गया था। ठीक है आ जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, दूसरी जानिब से आने की हामी भर ली गई थी। वकार ने फोन बंद किया और अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। रबिया के बहुत इसरार पर आज शाम वो थोड़ा वक्त निकाल कर घर आई हुई थी। तुम्हें जरा एहसास नहीं कि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या हाल होगा? चाय और स्नैक्स के साथ साथ रबिया उसकी डांट से भी तवाजे कर रही थी। उफ खुदाया अम्मा, वो बेबसी से माथे पर हाथ मारकर बोली। सामने ही सोफे पर राफे बैठा उसकी हालत इंजॉय कर रहा था। प्लीज तुम समझाओ इन्हें। उसे दांत निकालते देखकर यमामा ने पहले तो उसे घूरा, फिर मदद तलब की। अम्मा आप तो कम से कम ये बात ना करें, आपको पता है मैं इस फील्ड में औरतों की तलाकें करवाने या उनके घर जोड़े रखने के लिए नहीं आई थी, मुझे क्रिमिनल्स के खिलाफ केस करने हैं, वो एक नए सिरे से उन्हें फिर समझा रही थी। अच्छा, केस करो, मगर ये जो आए दिन तुम्हें धमकियां मिलती हैं, जो चंद हफ्ते पहले तुम्हारे फ्लैट पर हुआ, तुम हमारे पास रहती भी तो नहीं ना कि मुझे तुम्हारे हवाले से तसल्ली रहे। आज उनका उसे बुलाने का मकसद ही ये सब समझाना था। हालांकि वो जानती थी कि ये सब करना बेसुध है, मगर वो अपनी ममता का क्या करती, जिसकी वजह से वो हर बार इस आस में उसे समझाने बैठ जाती थी कि शायद वो उनकी बात मान ले। ये सब तो इस फील्ड का हिस्सा है, धमकियां ना मिले तो ये तश्वीश की बात है। बस आप ये यकीन रखें कि जिस अल्लाह ने मुझे इतने बुरे हालों में भी बचा लिया था, वो आगे भी बचा लेगा, और अगर नहीं बच सकी तो मरना तो है ही ना। तो बस जब मौत आई होगी तो कोई जगह कोई रिश्ता मुझे नहीं बचा सकता। उसकी बेखौफ बातें सुनकर राफे और रबिया दोनों का दिल खौफ से कांप उठा था। लड़कियां तो नाजुक मिजाज होती हैं, मगर हालात ने उसे बेखौफ बना दिया था, और इसी बेखौफी की वजह से उसे कभी किसी का डर और खौफ नहीं रहा था। शायद जो लोग मौत को नजदीक से देख लेते हैं, उनमें मौत का खौफ इसी तरह खत्म हो जाता है। ये मामा को भी अब मौत का डर नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत से अपनाया था, मां बनकर हमेशा तुम्हारे लिए सोचा है, वो बमुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांध कर बोली। मोहब्बत से मुस्कुराते वो उठकर उनके सोफे पर उनके पास बैठी। अम्मा, हमारा ईमान है ना कि हर रिश्ता हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। उनके कंधे के गिर्द अपना बाजू रखे वो उन्हें समझा रही थी, जो चेहरा नीचे किए सोफे की हत्थी को अंगूठे के नाखून से खुरचते बमुश्किल अपने आंसू रोकते हुए सर हिला कर बोली। राफे बस खामोशी से लब भींचे उन दोनों को देख रहा था। ये मामा की बातें हर बार की तरह आज भी उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। प्लीज अम्मा, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, मगर मैं इतनी हकीकत पसंद हो चुकी हूं कि मैं मौत और मर जाने के खौफ में मुब्तला नहीं होती। प्लीज अम्मा, मैं किसी भी सूरत अपनी जिंदगी के इस मिशन को खत्म नहीं कर सकती, वो बेचारगी से बोली। वो जानती थी कि रबिया उससे बहुत प्यार करती हैं। 12 साल की थी वो जब उन्होंने यतीम खाने जाकर उसे अडॉप्ट किया था। राफे के बाद वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। इसी तिश्नगी को मिटाने के लिए रबिया और अहमद ने फैसला किया कि वो यतीम खाने से किसी बच्ची को अडॉप्ट करेंगे। डरी सहमी सी ये मामा को देखते और उसके साथ होने वाले जुल्म का सुनते ही उन्होंने फौरन से पेशतर उसे ही अडॉप्ट करने का फैसला किया। मगर इस यतीम खाने के असूलों में शामिल था कि जिस भी बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट किया जाए, उसके वालिदैन उसके पेपर्स में अपना नाम लिखवाते हैं स्पॉन्सर की हैसियत से। बच्ची या बच्चा रहते यतीम खाने के पास हैं, वो उनके रहने, खाने पीने, तालीम और बाकी अखराजात के स्पॉन्सर उठाते हैं, और हर वीकेंड पे वो बच्चा या बच्ची अपने स्पॉन्सर फैमिली के साथ वक्त गुजारने जाते हैं। रबिया को इतना इत्मीनान ही बहुत था कि राफे के अलावा दुनिया में अब उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने उससे बेतहाशा प्यार दिया था और उसने भी हमेशा उन्हें अपने माँ बाप की जगह समझा था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अपने साथ होने वाले तकलीफ दे वाकिए ने उसे ना डर और बेखौफ बना दिया था, और इसी चीज से अब रबिया डरती थी। अपनी दलील मुकम्मल करने के बाद उसने अलग फ्लैट में रहने को तरजीह दी थी। उसे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं थी, मगर वो अपनी वजह से रबिया, अहमद और राफे को किसी नुकसान से दो चार होता नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो उनके साथ नहीं रहती थी। वकील बनकर आए दिन मिलने वाली धमकियों ने उसे और भी ना डर बना दिया था। वो सिर्फ अपने साथ जुल्म करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिंदा रहना चाहती थी। तुमने आज फिर मेरी माँ को रुला दिया ना, रात में उसके फ्लैट में उसे छोड़ने के लिए जाते हुए फरहान बोला। वो आज बाकी दिनों की निस्बत ज्यादा खामोश थी। वो मेरी भी कुछ लगती हैं, फरहान की बात पर नाराजगी से उसकी तरफ देखा, जो आंखों में हुफ के लिए ड्राइव कर रहा था। मगर अफसोस, तुम अभी तक हमें दिल से अपना नहीं समझती। ये मामा अब उसके दिन ब दिन बढ़ने वाले तकाजों से परेशान होने लगी थी। प्लीज फरहान, मैं जिस बात को इग्नोर कर रही हूँ, मेरे ख्याल में अब मुझे उसे डिस्कस कर लेना चाहिए। वो संजीदगी से अब उससे मुखातिब थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि ये बात अब उसे फाइनली फरहान के साथ कर लेनी चाहिए, ताकि उसके दिल में जो जज्बात पल रहे हैं उन्हें वही रोक दिया जाए। उसे अपना ये दोस्त बहुत प्यारा था और वो अपनी वजह से उसे दुख नहीं देना चाहती थी। देखो फरहान, मेरे ख्याल में तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की देखकर अब शादी कर लेनी चाहिए। फरहान जो गौर से उसकी बात सुन रहा था, उसके मशवरे पर झटके से उसकी गाड़ी रुकी। बेयकीन नजरों से उसे देखा, जो उसके यूं देखने पर नजरें चुरा कर रह गई। अच्छा, इस्तेहजाया मुस्कुराहट फरहान के लबों पर बिखरी। बमुश्किल उस पर से नजरें हटाकर उसने घड़ी स्टार्ट की। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं कि शादी अब मेरी तरजीहात में कहीं भी नहीं है। मुझे इस रिश्ते की ना कोई चाह है, ना ही मैं कभी शादी करूंगी। और क्यों नहीं करूंगी ये भी तुम अच्छे से जानते हो। अब की बार उसकी जानिब देखते उसने बहुत कुछ बावर करवाया। जिंदगी एक शख्स पर नहीं रुकती, फरहान ने उसे समझाना चाहा। और जब जिंदगी वही एक शख्स हो तो? यमामा के सवाल पर वो लाजवाब हो गया। फरहान, मेरी जिंदगी में अब किसी और की गुंजाइश नहीं है। प्लीज, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मगर ये प्यार बेहतरीन दोस्त वाला है। उसकी बात पर वो बमुश्किल खुद पर जब्त कर गया। क्या कुछ नहीं टूटा था अंदर? प्लीज मेरे जज्बों की यूं तस्लील मत करो, फरहान ने जब्त करते हुए उसे टोका। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं इस सब की कदर करती हूँ, मगर मैं तुम्हारे सच्चे जज्बों के काबिल नहीं हूँ, वो बेबसी से बोली। फरहान होंठ भींचे बस सामने देखकर ड्राइव किए जा रहा था। किस कदर सख्त दिल हो तुम। फरहान ने उसके फ्लैट की बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकते हुए तासुब से उसे देखा। इसीलिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे इतने अनमोल जज्बों के काबिल नहीं। हमेशा तुमने मुझे मुश्किलों से नबर्द आजमा होने के लिए समझाया है। उम्मीद करती हूँ अब तुम खुद को भी इससे निकलने पर समझाओगे। बहुत मुश्किल से उसने फरहान की जानिब देखा। वो अपना बेहतरीन दोस्त किसी सूरत खोना नहीं चाहती थी। वो बेबसी से मुस्कुराया, होंठ भींचकर होले होले हाथ स्टीयरिंग पर मारने लगा। अंदर का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि कब उसकी दोस्ती मोहब्बत में बदली। वो अब इन जज्बों को महसूस ही नहीं करती थी, तो उसे पता कैसे चलता? प्लीज फरहान, मैं उम्मीद करती हूँ आइंदा हम में इस टॉपिक से मुतल्लिक कोई बात नहीं होगी और तुम मुझसे मेरा दोस्त नहीं छीनोगे। मेरे पास अब तुम्हारे अम्मा और बाबा के अलावा है ही कौन? ये भी ना रहे तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। वो बेबसी की इंतहा पर थी। किसी भी तरह फरहान को इस सब से रोकना चाहती थी। मैं ये दोनों काम कर लूंगा, मगर इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकता। सर उठाकर सामने देखते वो बड़े जब्त से गोया हुआ। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें कोई इतनी बेहतरीन मिले कि ये सब तुम्हें कुछ सालों बाद एक हमाकत के सिवा कुछ ना लगे। उसके चेहरे पर अब पथरीले तासरात आ चुके थे। बद्दुआ दे रही हो? नजरें उसके चेहरे की जानिब मोड़ी। मर कर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, तुम बहुत बहुत हास हो। इस वक्त वो जब्त की इंतहाओं पर थी। खुद को यूं जाया मत करो, मैं बस ये सांसें गुजार रही हूँ जो अल्लाह ने मेरे लिए मुख्तस कर रखी हैं, वरना मुझ में जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम ये अच्छे से जानते हो। और क्यों नहीं है ये भी जानते हो, बस जितनी जिंदगी है वो भी खामोशी से सामने देखते हुए बोली। प्लीज फरहान, मैं तुम्हें अपनी वजह से ना तो किसी तकलीफ में देख सकती हूँ, ना तकलीफ देने का सोच सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज। वो बेबसी से उसकी जानिब देखकर बोली, जो उसे देखने से एहतराज बरत रहा था। कह चुका हूँ ना, अब दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगा। उसे यकीन दहानी करवाई। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। यमामा ने भी मजीद बात करना मुनासिब नहीं समझा। गाड़ी से उतरकर बिल्डिंग की जानिब बढ़ी। फरहान ने उस कठोर को दूर जाते हुए देखा। अगर ये केस खत्म हुआ या तुमने पैसे खाए, तो याद रखना, ना सिर्फ तुम्हारे हलक से वो पैसे निकलवाऊंगा, बल्कि तुम्हारे खानदान को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना जाने रात के इस पहर की कौन फोन पर बकवास कर रहा था। अबे कौन है? जिंदगी अजाब की हुई है तुम जैसे लोगों ने, गफ्फार ने साइड टेबल से टाइम पीस उठाकर देखा। रात के 2 बज रहे थे। शहनशाह से तो वाकिफ ही हो गए। दूसरी जानब से लिए जाने वाले नाम पर गफ्फार की आंखें भक से खुली। तुम? उसकी गुग्घी बंद गई। हाँ मैं, शहंशाह। कान खोलकर मेरी बात सुनो। अब की बार वो थूक निकलता उठ बैठा, वो भी ऐसे मौद्दब के जैसे शहंशाह सामने ही बैठा हो। शहंशाह के नाम से वकील, जज और पुलिस वाले थर थर कांपते थे। वो अपने मुहालिफ जाने वालों को ऐसे गायब करता था कि उसका नामो निशान फिर कभी किसी को नहीं मिलता था। मुझे मालूम हुआ है कि तुम सरताज के साथ उसके केस के सिलसिले में गुठ जोड़ कर रहे हो। याद रखना, अगर ये केस खत्म हुआ या पेंडिंग में गया, तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। शहनशाह की बात पर वो जितना भी चौंकता कम था, क्योंकि कल ही उसे सरताज ने बुलाया था और उसके खास अड्डे पर साउंड प्रूफ कमरे में सरताज, गफ्फार और वकार के अलावा और कोई नहीं था। सरताज ने उसे मुंह मांगी रकम ऑफर की थी इस केस को पेंडिंग में डालने की, और गफ्फार ने उससे सोचने का वक्त मांगा था। ये केस वो इतनी आसानी से इसीलिए अब खत्म नहीं कर सकता था कि सरताज का नाम अब मुल्की सतह पर मौजूद काले धंधों वालों की लिस्ट में शामिल हो चुका था, और हुकूमती बुनियादों पर जो एक सेल ऐसे लोगों के लिए तश्कील दिया गया था उसका चार्ज एक फौजी के पास था, और फौज गद्दारों को किसी सूरत नहीं छोड़ती, ये सब जानते थे। इसीलिए गफ्फार कश्मकश में था कि सरताज के केस को किस तरह वहां से हटाया जाए, और इसी सिलसिले में उसने वक्त मांगा था। मगर वो हैरान था कि उनकी मुलाकात का शहनशाह को कैसे मालूम हुआ, जिंदा हो या अभी से कूच कर गए। उसकी तंज भरी आवाज फोन से उभरी, मैं तुम्हें सोचकर, शहनशाह सोचने की मोहलत नहीं देता, हां या ना, तीसरा कोई रास्ता मैंने कभी किसी को नहीं दिया। तुम मुझे टाल रहे हो, गफ्फार की बात काट कर वो गुर्राया। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाएगा, और मैं तो जैसे तुम्हारे खानदान को हीरो के हार पहनाऊंगा। ये गारंटी देता हूं अगर ये केस प्रोसीड करते रहे तो तुम और तुम्हारे खानदान की हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूं, मगर काम करने की सूरत में। इतनी सी भी हेरा फेरी की ना तो शहनशाह तुम्हें तुम्हारी सोच से भी पहले पालेगा, और अंजाम मैं तुम्हें बता चुका हूं। शहनशाह का गुराता लहजा उसे पसीने से शराबोर कर गया। पसीना साफ करो, अपना उठो और पानी वानी पियो, जग तो खाली पड़ा है तुम्हारा। उसकी बात पर गफ्फार का थर थर कांपना बनता था, यानी उसे देख रहा था। और हाँ, ये कॉल ट्रेस करवाने की गलती मत करना, कोशिश करोगे भी तो मुंह की खाओगे, कहते साथ ही शहनशाह ने फोन बंद कर दिया। उसने भी कॉल एंड करके जैसे ही साइड पर मोबाइल रखा, मोबाइल से एक चिंगारी नमूदार हुई और वो वहीं पर जल गया। गफ्फार दिल पर हाथ रखे ये खौफनाक मंजर देख रहा था। उसका मोबाइल उसकी नजरों के सामने जल गया था, अब वहां से धुआं उठ रहा था। वो हकीकत में शदीद खौफ ज़दा हो चुका था। शहनशाह की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा रास्ता सिर्फ मौत और यकीनन तकलीफ दे मौत का था। आज जैसे ही वो घड़ी में बैठी, वहां पहले से ही सफेद ट्यूलिप का बुके पड़ा हुआ था। वो ना तो खौफज़दा थी और ना परेशान, हाँ मगर हैरान जरूर होती थी। पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा था, कभी फ्लैट की बालकनी पर ऐसा ही बुके मिलता, कभी किचन के आगे बनी खिड़की में, कभी ऑफिस पहुंचती तो उसकी टेबल पर पहले से पड़ा होता, और आज तो घड़ी के अंदर। रात में उसे अच्छी तरह याद था कि जिस वक्त वो एक सेमिनार अटेंड करके वापस आई थी, तब अच्छी तरह घड़ी को लॉक किया था, शीशे भी बंद किए थे। आखिर कौन हो सकता है, क्या सरताज या वकार? उसका दिमाग इन्हीं दोनों की जानिब गया। दुश्मन गोलियां तो तोहफे में मार सकते हैं मगर फूल नहीं दे सकते। अपनी सोच की नफी करते उसका ध्यान यकदम फरहान की जानिब गया। उफ, ये बंदा, उसे शदीद गुस्सा आया, वही हो सकता था। हालांकि उस दिन के बाद से उसने दोबारा इस हवाले से या मामा से बात नहीं की थी। खामोशी से कन्विंस करना चाहता है या मामा स्टीयरिंग पर हाथ रखे कुछ देर सोचती रही, फिर एक गहरी सांस भरकर गाड़ी स्टार्ट की। वो दोबारा फरहान से इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी मगर ये हरकतें उसे फिर से उससे बात करने पर उकसा रही थी। अभी वो ऑफिस आकर इसी सोच में गर्क थी कि फरहान को फोन करे या उसके ऑफिस जाकर उससे इस हरकत की बाबत दरियाफ्त करे कि उसका मोबाइल बज उठा। बेतवजही से उसने नंबर पर गौर किए बिना मोबाइल उठाया। हेलो, उसकी हेलो के जवाब में चंद लम्हे दूसरी जाने खामोशी ही कायम रही। सरताज और उसके बेटे का आइंदा तुमने फोन अटेंड नहीं करना, दूसरी जानिब से एक गंभीर आवाज ने उसे जो वार्निंग दी वो सुनकर के मामा जितना हैरत से दो चार होती कम था। ये दुनिया में कौन पैदा हो गया मुझे हुक्म देने वाला, एक आईब्रो उचकाकर उसने सोचा। क्यों, तुम्हारे पुप्पा लगते हैं, तुम्हारे पुप्पा लगते हैं वो जो इतना दर्द उठ रहा है। तैश में वो उसी पर चढ़ दौड़ी। एक दफा की बात भेजे में नहीं बैठती तुम्हारे, जब कहा है कि उन कमीनों का फोन नहीं उठाना तो नहीं उठाना। उसके अंदाज पर उसने फोन कान से हटाकर अब की बार नंबर देखा, चार हिंसों वाला अजीब सा नंबर था। और आप ये बताना पसंद करेंगे कि आप कौन हैं? मैं आपकी बात किस खुशी में मानूं? वो दांत किचकिचा कर बोली। किसी का ऐसा हाकमाना लहजा उसने कभी बर्दाश्त नहीं किया था। तुम्हारा चाहने वाला, उसकी बात पर दूसरी जानिब से पहले तो कह कहा गुंजा और उसके बाद जो अल्फाज उस शख्स ने बोले, ये मामा को 440 वोल्ट का करंट लगा गए। फरान, अगर ये सब बकवास तुम्हारी है तो यकीन करो तुम्हारा दिमाग सीधा कर दूंगी। वो अब की बार उच्च समझते हुए भुनाकर बोली, तुम्हारे उस आशिक को तुम्हारी एक बार की डोज ही काफी थी मेरी जान। इस तरह से तहातु पर यमामा का दिल किया, ये जो भी घटिया इंसान है उसका मुंह तोड़ कर रख दे। और ये एक बार की डोज, अपना नन्हा सा दिमाग ज्यादा हर्ज मत करो। सोचते हुए और भी हसीन लगती हो, यमामा की रीढ़ की हड्डी चंद लम्हों के लिए सुन सुनाई। मुंह तोड़ दूंगी तुम जैसों का घटिया इंसान, यमामा ने आखिरकार अपनी हैरत को पसे पुश्त डालते हुए अपने असली अंदाज में उसे लताड़ा। 100 बार मेरी रानी, 100 बार। दूसरी जानिब जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ाता शरीर मुस्कुराता लहजा। यमामा को आग बगोला कर गया, गुस्से में फोन बंद किया, सामने टेबल पर पड़े ट्यूलिप को एक नजर देख कर हाथ में उठाया और जोर से सामने दीवार पर मारा। सरताज, अगर ये तुम्हारा बंदा है ना तो छोड़ूंगी नहीं। मोबाइल फिर से उठाकर फौरन से काशिफ का नंबर मिलाया। हेलो काशिफ, मेरे मोबाइल पर अभी जो कॉल आई थी उसका रिकॉर्ड चाहिए मुझे क्विक। ये वही शख्स था जिससे वो अपने फोन्स का रिकॉर्ड हमेशा निकलवाल कर अपने दुश्मनों के मुंह पर ही उन्हीं की बातें मारती थी। अभी तो कोई कॉल नहीं आई तुम्हारे मोबाइल पर, उसने सामने रिकॉर्ड चेक करते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो, थोड़ी देर पहले ही 1400 के नंबर से मुझे कॉल आई है, उसने झुंझलाकर कहा। नहीं यमामा, तुम्हारे मोबाइल पर जो लास्ट कॉल आई थी वो कल रात की है और यकीनन फरहान की है। उसकी बात पर वो मजीद हैरान हुई। अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ, कहते साथ ही उसने जैसे ही अपने मोबाइल का कॉल लॉक चेक किया ताकि अभी आने वाली कॉल को देख सके, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके मोबाइल में आखिरी कॉल कल रात की ही थी। जिस नंबर से अभी उसे कॉल आई थी उस नंबर का नामो निशान भी उसके मोबाइल में कहीं नहीं था। ये क्या मजाक है, अब की बार वो और भी उलझी, सर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर वो सर पकड़कर बैठी रही, उसे कोई खौफ नहीं था, वो मरने से डरती भी नहीं थी, बस अल्लाह जी इस केस का फैसला होने तक जिंदगी दे दे। वो सरताज और उसके खानदान को कड़ी सजा दिलवाने तक जिंदा रहना चाहती थी। सब हिसाब चुकाना था, बहुत हिसाब चुकाना था उसके खानदान को, ना सिर्फ यमामा का बल्कि उन सब गरीब और नादर लोगों का जो वक्तन फवक्तन उसकी दरिंदगी की भेंट चढ़ते रहे थे। आज सरताज के भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर चुकी थी, कल ही किसी गुमनाम नंबर से उसे कुछ सबूत फराहम करने का कहा गया था। वो नहीं जानती थी कि इस फोन के पीछे कौन था, उससे सिर्फ सबूत से मतलब था। उसके ऑफिस के गार्डन में एक गमले में एक सीडी की निशानदही की गई थी। जैसे ही उसे फोन पर इतला मिली, वो नहायत पुरसकून अंदाज में उस गमले से वो सीडी पकड़ लाई। घर जाकर जब उसने उस सीडी को प्लेयर में ऑन किया, वो ये देखकर दंग रह गई कि बहुत से मुश्किल दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर सरताज के भाई वहाज ने ना सिर्फ पुलिस के चंद ईमानदार ऑफिसर्स को गायब करवाया था बल्कि चंद एक मुकामात पर बम ब्लास्ट करने का प्लान भी मरतब किया गया था। यानी ये लोग अपनी जायदादें बनाने की खातिर मुल्क को खोखला करने में भी मुलविस हैं, उसने दुख से सोचा। अब उसे जल्द अज जल्द ये सब अहम सबूत कोर्ट में पेश करके उसके भाई को भी अंदर करवाना था। इस मुल्क की नस्लों को बर्बाद करने चले हो, मैं तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर दूंगी, वो अजम लिए आज ये सब सबूत देना चाहती थी। मगर इस फोन कॉल ने उसे परेशान कर दिया था, अभी भी वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो काफी दिनों बाद वकार से मिला था, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। वकार ने मुसाफा करते ही हुफकी से पूछा, पिछले 2 साल से समी से उसकी काफी दोस्ती हो गई थी। समी से उसकी मुलाकात कैनेडा में एक सेमिनार के दौरान हुई थी, पहले पहल अच्छी सलाम दुआ हुई और फिर ये सलाम दुआ गहरी दोस्ती में बदल गई। समी अपने वालदैन का अकलौता बेटा था, गारमेंट्स का बिजनेस था और इससे ज्यादा वकार उसके बारे में नहीं जानता था, मगर वो वकार से अपनी दोस्ती पूरी तरह निभा रहा था। वकार इस नए मसले के बारे में भी उससे हर तरह का मशवरा ले रहा था। तुम उस दिन भी बहुत परेशान थे लेकिन मुझे कहीं जल्दी जाना था तो तुमने पूरी बात नहीं बताई थी, अब बताओ हुआ क्या था। वो दोनों इस वक्त वकार के जिम में मौजूद थे, दोनों एक टेबल और उसके साथ रखी कुर्सियों पर से 2 पर आमने सामने बैठे थे। वो ये जिम ऊपर से तो वर्जिशी जिम मालूम होता है मगर इसकी बेसमेंट में शराब और जुवे का अड्डा था। वकार ने उसे ये मामा के मुतालिक सब बात बताई। ये लड़की हद से बढ़ती जा रही है, पहले सोचा था इसे उठवाकर उसके कहे लफ्जों की ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी मौत भी मांगेगी तो भी उसके करीब नहीं आएगी, उसे मौत भी मांगेगी तो उसके करीब नहीं आएगी, इसे सिसका सिसका कर मारूंगा, अपनी आग भी बुझाऊंगा, और जो जो इस गंगा में हाथ धोना चाहेगा उसे इजाजत दूंगा। वकार के चेहरे पर इस लम्हे चट्टानों की सी सख्ती के साथ साथ शैतानियां टपक रही थी, मगर अब वो इसकी मोहलत नहीं आने दे रही। अगर अब हमने उसे अगवा करवाया तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, सब इल्जाम हम पर आएगा और हम मजीद इस केस में फंस जाएंगे। समी खामोशी से उसकी सब बातें सुन रहा था। तो फिर अब क्या सोचा तुमने? कुछ देर की खामोशी के बाद समी की आवाज आई। अब सोचा है उसका किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत, उसकी आंखों से ऐसे चिंगारियां निकल रही थी जैसे यमामा इस लम्हे उसके सामने हो। लेकिन अगर ये भी तुम्हारे हक में नहीं गया तो? उसकी बात पर एक गुरूर से भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरी। इसीलिए तो तुमसे ये बात की है, मैं जानता हूं तुम भी कम शैतानी सोच के मालिक नहीं हो। उसकी बात पर वो महसूस गुन मुस्कुराहट होंठों में दबा गया। यानी जाल तक तो तुमने सोच लिया है, अब ये जाल बिछाना कैसे है वो मैंने सोचना है, समी बाएं आंख दुबाकर मुस्कुराते हुए बोला। वकार उसकी शरारत पर कहकहा लगाए बिना ना रह सका। ऐसे ही तो दो सालों से तुमसे दोस्ती नहीं रखे हुआ, दोनों शैतान ज़हनियत के हामिल इंसान मिले हुए थे। तो बस फिर कल तुम पहली फुर्सत में उसके ऑफिस जाओ, क्योंकि अभी अगली पेशी में 4 दिन है, तब तक शायद ये काम हो जाए, और अगर ना हो सकी तो बस फिर अगला कदम उसकी मौत की सूरत होगा। उसके लहजे में सफाकी थी। ठीक है, मैंने इसीलिए तुमसे मशवरा लेना मुनासिब समझा था, वकार ने ताईद में सर हिलाते हुए कहा। रात में जिस वक्त वो घर आया, शम्स जाग ही रहे थे। आप सोए नहीं अभी? वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर बैठे वो यकीनन कॉफी पी रहे थे। तुम जब तक बाहर रहो मुझे नींद नहीं आती, उनकी मोहब्बत पर सरशार होता वो आगे बढ़कर उनके माथे पर प्यार करता उनके साथ ही सोफे पर बैठ गया। कभी कभी तुम प्यार निछावर करने में अपनी माँ से भी बाजी ले जाते हो, उनके मुस्कुराते लहजे में कहे गए अल्फाज उसे कहकहा लगाने पर मजबूर कर गए। यकीनन तुम्हारी बीवी कभी इस बात की शिकायत नहीं करेगी कि तुम प्यार का इजहार करने में कंजूस हो। जो बाप के साथ इतनी महबूबाना हरकतें करे वो बीवी के साथ? उनकी अधूरी बात पर वो फिर से कहकहा लगाए बगैर रह नहीं सका। डैडी प्लीज, अब वो ब्लश कर रहा था और वो मोहब्बत से बेटे का रूप देख रहे थे। खुदा जल्द ही मुझे ये वक्त दिखाए जब मेरी बहू तुम्हारी ही तरह तुम्हारी हरकतों पर ब्लश करे। उनकी बात पर अब की बार उसने मुस्कुराते चेहरे लेकिन हुफकी भरी नजरों से उन्हें देखा। आप क्या इस वक्त मेरे मुस्तकबिल पर रोशनी डालने के लिए ही जाग रहे थे? अब की बार कहकहा लगाने की बारी शम्स की थी। नहीं मेरी जान, तुम्हारे मैसेज ने मुझे परेशान कर दिया था, जल्द ही इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब की बार उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए। नाइल ने एक संजीदा नजर उन पर डाली। जी डैडी, मेरा वॉइस मैसेज भी सुन लिया होगा आपने? हाँ, तुमने अच्छा किया उसे वहां भेज कर, ये बेहद जरूरी था, वरना हमारे हाथ सबूत ना आता कि वो क्या सोचे बैठे हैं। उन्होंने कॉफी का आखिरी घूंट भरते हुए कप को टेबल पर रखते हुए कहा। तुम कॉफी लोगे? उनके सवाल पर वो यकदम चौंका। नहीं, अभी पीकर ही आया हूं, उसके जवाब पर वो महज सर हिलाकर रह गए। मैंने हफ्ते वाले दिन का प्लान किया है, अब आपने उसे वहां से निकलवाने के सब इंतजाम करवाने हैं। तुम हथेली पर सरसों तो नहीं जमा रहे? मेरा ख्याल है पहले ही बहुत देर हो चुकी है, और वैसे ही जुम्मा को जैसे ही इस बार का फैसला पता चलेगा वो जरूर हाथ पांव मारेगा, और इससे पहले कि वो इश्तियाल में कुछ करे मैं उसे हवा देकर अपना काम निकलवाऊंगा। उसकी बात पर वो मजीद कोई सवाल उठा ही नहीं सकते थे। वो जानते थे कि नाइल पहले ही उसके लिए कितना तड़पा है। वो और महक उसकी एक एक तकलीफ से आगाह थे, वो मजीद उसे कैसे तकलीफ में देख सकते थे। ठीक है, मैं सबको ब्रीफिंग दे दूंगा, उनसे कोऑर्डिनेट फिर तुम कर लेना। उनकी बात पर वो कदरे मुतमईन नजर आया। चलो अब जाकर सो। सोफे से उठते वो उसका कंधा थपथपाकर बोले, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो सकता हूँ? उसके शरारती अंदाज में किए गए सवाल पर वो जाते जाते पलटे, तुम ज्यादा शौकी होते जा रहे हो। उनके लहजे में छुपे इकरार और हुफकी के मिले जुले तासरात ने उसे मजा दिया। महक तहज्जुद के लिए उठती है, अब सोच लो सिर्फ डेढ़ घंटा है तुम्हारे पास। वो जानता था वो कभी मना नहीं करेंगे, मगर वो उनकी इजाजत के बगैर और उन्हें बताए बगैर उसके पास जाता भी नहीं था। अब ज्यादा दांत मत निकालो, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। और उनकी बात पर वो मुस्कुराते हुए सर नफी में हिलाता तेजी से उठा। आज रात उसका सोने का कोई इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि वहाज का केस भी वो साथ ही शुरू कर दे, ताकि दोनों भाइयों को बयक वक्त कानून आड़े हाथों ले। लाउंज में मौजूद सोफे के करीब नीचे गद्दा बिछाए वो आरामदेह अंदाज में तकिया दीवार से लगाए, पिछले 4 घंटों से लैपटॉप टांगों पर धरे एक ही पोजीशन में बैठी वहाज का पूरा केस तैयार कर रही थी। उसे कल ही ये केस फाइल करना था, इसीलिए रात को सोने की बजाय वो काम में मसरूफ थी। 4 घंटों बाद जब काफी हद तक केस बन चुका, तब उसने लैपटॉप से नजरें हटाई, सामने लगी घड़ी में देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे। लैपटॉप साइड पर रखती वो अपनी जगह से उठकर ओपन किचन की जानिब गई, कॉफी कप में डालकर वो फेंटने लगी, साथ साथ कैबिनेट्स में झांकने लगी कि कुछ खाने को भी मिल जाए। उसी दौरान लाइट चली गई। कुछ दिनों से यूपीएस की बैटरी भी खराब हो चुकी थी। अब यकदम लाइट जाने पर उसे याद आया कि वो रोज आज लूंगी के चक्कर में भूल जाती थी। इस मुल्क में तो बिजली का बहरान खत्म नहीं होना, हमें अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। अफसोस से सोचते वो मुड़ी, ताकि जहां वो काम कर रही थी वहां पड़े मोबाइल की टॉर्च ऑन कर सके। ये भी शुक्र था कि चांद की रोशनी पूरी आपोताब से बालकोनी से होती उसके लाउंज में आ रही थी। हर चीज का हेला सा नजर आ रहा था, उसके लिए इतना ही बहुत था। अंदाजे से नीचे फर्श पर बिछाए मैट्रेस के करीब गई तो किसी की मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ। मैट्रेस के साथ पड़े सोफे पर सरसराहट उसने साफ महसूस की। अभी वो बैठी अपना मोबाइल उठाकर सोफे को गौर से देख ही रही थी कि कोई उसके करीब कान के करीब आया। कैसी है मेरी रानी? गंभीर लहजे ने लम्हा भर को उसे दहशत ज़दा किया। वो फटी फटी आंखों से उस हेवले को देख रही थी जो अब भी उसके चेहरे के करीब था। चंद ही लम्हे लगे थे उसे खुद को संभालने में। जल्दी से खड़ी हुई, क्यों आए हो यहां? दुरुस्त लहजे में सवाल किया, साथ ही साथ कप पर गिरफ्त सख्त की। अपनी रानी से मिलने भी नहीं आ सकता तो तुफ है फिर मेरी बहादुरी पर। लहजे में बदमाशों वाला टच था। मिल लिए, अब 9 तो 11 हो जाओ। वो भी ये मामा थी किसी से ना डरने वाली। वो जो कोई भी था ये मामा के अंदाज पर कहकहा लगाए बगैर नहीं रह सका। दूरी की बातें जाने दो, दिल पर हाथ रखे वो बड़े अंदाज में गुनगुनाया, अगर तो तुम सरताज या वकार के बंदे हो और मुझे फजूल में धमकाने की ख्वाहिश से आए हो तो एक बात जहन नशीन कर लो, मैं मर तो जाऊंगी मगर उनके केस से पीछे नहीं हटूंगी, वो उसे वार्न करते हुए बोली। अब वो हियोला सोफे से उठकर उसके करीब खड़ा था। भारी भरकम दाढ़ी और लंबे बाल थे, मगर अंधेरे के सबब उसके चेहरे की हयत वाजिया नहीं हो रही थी। मरे मेरी जान के दुश्मन, मोहब्बत से चूर लहजे में बोलने वाले जुमले पर वो दंग रह गई। बात सुनो तुम, ये अपना ठरकी अंदाज किसी और पे जाकर आजमाना, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फिर चट्टानों के से सख्त लहजे में बोली, किसी और की इन बातों से तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना उस शख्स की मौत मेरे हाथों लिखी जाएगी। अपनी बात खत्म करके उसके चेहरे पर बिखरी लट्टों को फूंक मारी। अरे जाओ, वो उसकी दीदा दलेरी पर हैरत से उसकी बात को हवा में उड़ाने के से अंदाज में बोली, जाऊंगा भी और तुम्हें लेकर भी जाऊंगा, मगर आज नहीं। आज तो बस यार के दीदार को आया था। उसे जिज करने वाले शरीर लहजे में अपनी बात कहकर बालकोनी की जाने बढ़ा, फिर गुस्से से मुठियां भींचे खड़ी या मामा की जाने मुड़ा। जो वार्निंग सुबह दी थी उसे याद रखना, सरताज और उसके बेटे का फोन अब नहीं उठाना। उसकी बात सुनकर वो जो अपना गुस्सा जब्त कर रही थी तड़क ही गई, करूंगी फोन भी अटेंड करूंगी और अब तो उसे धमकाने उसके घर भी जाऊंगी, कर लो जो करना है। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो जलकर बोली, उसका कहकहा बेसाख्ता था, मेरी चीती जब इस नडर अंदाज में बोलती हो ना, हाय बहुत घायल कर देती हो। किसी से जेर ना होने वाला शहनशाह अपनी चीती की हर अदा से जेर हो जाता है। उसके बेबाक अंदाज और अपने नाम का धमाका करने पर यमामा का दिमाग खोल कर रह गया। वो कैसे ना जानती इस शख्स को जो हर वकील हर पुलिस वाले की जुबान पर अजबर था, न जाने कितने केसेस में इन्वॉल्व था और हर बार पुलिस की हिरासत से इतनी आसानी से गायब हो जाता कि सब हैरान रह जाते। मगर ये समझ नहीं आती थी कि जब गायब ही होना होता था तो पकड़ाई क्यों देता था, या फिर मकसद पुलिस को ये बावर करवाना होता था कि वो शहनशाह के सामने बेबस हैं। एक बार तो उसके मरने की खबर भी सुनी थी, मगर वो भी महज एक ड्रामा था शायद। तुम शहनशाह हो? वो ही घटिया दहशतगर्द जो न जाने कितने केसेस में इन्वॉल्व है, उसने हैरान होते पूछा। जी जनाब, दुनिया के लिए दहशतगर्द, लेकिन अपनी रानी का अदना सा गुण हादिम। उसकी बात पर वो नहायत अदब से कॉर्निश बचा लाया। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम्हें तो हजारों मिल जाएंगी अब की बार, वो परेशान होकर बोले। उफ, एक दहशतगर्द का भी मुझ पर दिल लाना था, वो दिल में किलस कर रह गई। हाँ, मिल तो जाएंगी, मगर उनमें कोई इतनी दबंग यमामा नहीं होगी। मुझे तो बस यही चाहिए, वो जिद्दी लहजे में बोला। मैं खिलौना नहीं हूं कि चाहिए, अपने दिमाग से ये भूत उतार दो तो बेहतर है, और अब तफा हो जाओ यहां से, वरना ये कब मैं तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगी। जानती थी उसे पुलिस बुलाने की धमकी देना बेकार है, वो तो पुलिस को जेब में लिए फिरता है सहे नसीब। कभी ये मौका भी तुम्हें देंगे, जल्दी काहे की है। वो उसकी धमकी पर मुस्कुराता हुआ पलटा और बालकोनी से छलावे की तरह निकल गई। मामा उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन न जाने कितनी फुर्ती से निकला कि उसे नजर ही नहीं आया। उसी लम्हे लाइट आ गई, वो परेशान होती अंदर आई। वो बथेरे मुश्किल केसेस भुगता चुकी थी, मगर इस इश्को आशिकी के केस का क्या करती। ये केस बेहद पेचीदा था, वकार बाहर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी की जानी बढ़ा, जहां उसका ड्राइवर और गार्ड्स मुंतजिर थे कि चौकीदार को अपनी जानब आते देखकर गाड़ी की जानब उसके भरते कदम रुक गए। क्या मौत आ गई तुझे? वह नागवारी से अपने से कई गुना बड़े और बूढ़े चौकीदार से मुहातिब हुआ। वो साहब जी, ये हकी लिफाफा आया है, वो हांफते हुए एक अदालती नोटिस उसके जाने बढ़ाकर बोला। वकार ने छपटने के अंदाज से वो लिफाफा लेकर चाक किया। बूढ़ा चौकीदार उसके तेवर भांपते हुए तेजी से वापस की जाने बढ़ा। नोटिस पढ़ते ही उसके तासुरात खतरनाक हो चुके थे। गाड़ी बंद करो, मैं अभी नहीं जाऊंगा, गुस्से से बमुश्किल इतना ही बोला। थप थप करता रहायशी हिस्से की जाने बढ़ा। सरताज अपनी बाकी फैमिली को पहले ही बाहर भिजवा चुका था, अब इस मुल्क में वो और वकार के अलावा वहाज और उसकी फैमिली मौजूद थे, जो कि गांव में हवेली और जमीनों की निगरानी करते थे। क्या हुआ है? तुम तो बाहर जा रहे थे, मूड क्यों खराब है? सरताज लाउंज में बैठा अपने महबूब मशरूब के साथ शुगल में मसरूफ था कि वकार को गुस्से से लाल चेहरा लिए अंदर आता देखकर हैरान हुआ। हमारे काले धंधे तो सरेआम हो चुके ही थे, अब चचा के लिए भी नोटिस आ गया है, उसने गुस्से से वही लिफाफा उसकी जानिब किया। सरताज ने पेशानी पर बल डालते उसका गुस्ताखाना लहजा हजम किया। लिफाफा जैसे ही खोला, वहाज के खिलाफ अदालत से नोटिस वाला कागज बरामद हुआ, जिसमें दहशतगर्दों का साथ देने और उन्हें दो नंबर तरीकों से मुल्क में आने का रास्ता देने पर इल्जाम ना सिर्फ आयद किया गया था, बल्कि उसकी चंद दिनों बाद पेशी भी थी, और पेश ना होने की सूरत में गिरफ्तारी के वारंट भी जारी होने की पेशी वार्निंग थी। सरताज सर पकड़कर बैठ गया। ये लड़की अब कत्ल होगी मेरे हाथों, वकार गुस्से में भरा बैठा था। सामने रखी विस्की की बोतल से ग्लास भरकर गटागट पी गया। जीना हराम कर दिया है इसने। सरताज नोटिस एक जानिब फेंक कर गालियां पकने लगा। फोन करें चचा को, हमें मुसीबतों में फंसा कर ना तो हमारा साथ दिया, अब अपने भुगतान तो भुगते। मुंह आस्तीन से साफ करते बाप को तीखी नजरों से देखते हुए बोला। सरताज ने उसी वक्त फहाज को फोन किया। भाई साहब, ये सब भी उस कमीनी को कैसे पता चला? वह आज भी हैरान परेशान बैठा था। वो कोई आम लड़की नहीं, मुझे लगता है बड़ी बड़ी ताकतें उसके हमराह हैं, बैठे बैठाए हमारी जिंदगी को अजाब से दो चार कर दिया है उसने। सरताज तो पहले ही अपने केस की वजह से गुस्से में था। मैंने उस हबीस जज को भी कायल करने की बथेरी की कोशिशें की थी, मगर वो घटिया इंसान जवाब ही नहीं दिया उसने मेरी ऑफर का। ऊपर से फैमिली भी पता नहीं कहाँ चली गई है उसकी। सोचा था कोई कातलाना हमला उसके बीवी बच्चों पर करवाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उस गंदगी के पोर्ट की, मगर जब से वो ऑफर की उसके बाद से तो उसकी फैमिली घर से रातों रात गायब हो गई है, अकेला ही है अब। उफ, लगता है हर जानिब से खेरा तंग हो रहा है। वो अपनी राम कहानी सुनाने लगा। तुम बस कल ही शहर पहुंचो, इससे पहले कि हालात खराब हो जाएं। हमें तो अकेला छोड़कर तुम सब गांव भाग गए थे, अब अपने करतूतों को खुद भुगतो। मुझसे एक टके की भी उम्मीद मत लगाना। इस लम्हे दोनों को अपनी अपनी पड़ गई थी, कौन भाई कहाँ का भाई। अच्छा किया आपने, ये रिश्तेदार हैं ही इस काबिल, जूती की नोक पर रखना चाहिए इन्हें। वकार सारी बात सुना चुका था, वकार सारी बात सुन चुका था, अपनी राय देने लगा। और तुम्हारा वो दोस्त समी किसी काम का नहीं निकला। वो उसकी बात अनसुनी करके सरताज उस पर चढ़ थोड़ा। मेरा ही दोस्त किसी काम का है, आपके तो सब जान निछावर करने वाले अब कोनों खुदरों में छुपे हुए हैं। उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी समझा। उसके एक्सीडेंट का पूरा प्लान तैयार है, आप बस अपनी फिक्र करें। वो तनसिया हंसी हंसता उठकर अपने कमरे की जाने बढ़ा। उल्लू का, सरताज मुंह में बड़बड़ा कर रह गया। सरताज की फैसला कुन पेशी से पहले सरताज की फैसला कुन पेशी से एक दिन पहले समी की हदायत के मुताबिक वकार अपने गनमैन समेत यमामा के ऑफिस पहुंच चुका था। मैडम वकार अपने बंदों समेत आया है। उसके पीए ने वकार को दरवाजा खोलकर अंदर आते देखकर फौरन यमामा को फोन घुमाया। ओए तेरी मैडम अंदर बैठी है। बिलाल के सामने रखी कुर्सी को ठोकर मारकर अपने मखसूस मगरूर लहजे में बोला, उसे अंदर आने दो। यमामा ने दूसरी जानब वकार की आवाज सुनते ही बिलाल को हुक्म दिया और फोन खट से बंद कर दिया। बिलाल ने थूक निकलकर सर अस्पात में हिलाया। अपनी मूछें मड़ोड़कर बिलाल को घूरी से नवाजता वो यमामा के ऑफिस की जानब बढ़ा। बगैर नॉक किए जोरदार आवाज से दरवाजा खोलता वो अंदर की जानी बढ़ा। यमामा अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए पुरसकून अंदाज में बैठी वकार के मकरूर अंदाज को तीखी नजरों से देख रही थी। उसका पुरसकून अंदाज वकार को आग बगोला कर गया। हाथ बढ़ाकर कुर्सी खींची। 1 मिनट, यमामा ने हाथ उठाकर उससे उसके एकदम से रोका। वो भभे उंचका कर उसे ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की। मेरे ऑफिस का फर्नीचर मैंने हलाल की कमाई से खरीदा है, तुम जैसे हराम खाने वाले इस पर बैठकर इसे नापाक कर देंगे। लिहाजा जल्दी जो बकवास करनी है वो करो और यहां से अपनी शक्ल गुम करो। तीखे जतून से उसे देखती उसे उसकी औकात याद दिला गई। ये मामा की बातों पर वो कैसे तैश में ना आता। उसने गुस्से से नथने फुलाए, हल्का सा रुख मोड़ कर चिंगारियां बरसाती नजरों से अपने गन मैंस को देखा अपने गनमैन को देखा। उन्होंने फौरन यमामा की जानिब अपनी गन्स तानी। अब उसने रुख मोड़कर भवें उचकाकर चिताती नजरों से यमामा को देखा। वो हल्का सा कहकह लगा कि तानो शाबाश, ना सिर्फ ये गन्स तानो बल्कि एक आध गोली भी चला लो, मुझे अपने मरने की कोई फिक्र नहीं। हाँ मगर मेरे ऑफिस में लगे कैमरे ये सब मंजर कैद करके इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव कवरेज शुरू करने को बेताब है। ये मामा ने अपने लैपटॉप का रुख उनकी जानिब किया जहां उनकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। देखो लड़की, वकार ने गुस्सा जब्त करते अपने गनमैन को गन्स नीचे रखने का इशारा किया। क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो, कितनी उम्र है तुम्हारी, 25 या 26 साल? उसने अब की बार तमहीद बांधी। क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो, देखो जितने पैसे कहोगी दे देंगे, बस तुम इस केस को खत्म करो। अब वो मिनटों पर उतर आया। यमामा अपनी सीट से खड़ी हुई। मेरी उम्र चाहे 26 हो चाहे 60 साल हो जाए, मगर तुम जैसे दरिंदों और मुल्क दुश्मन अनासिर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मेरी कीमत तुम जैसे नासूरों को जेल की सलाहों के पीछे ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना है, और इससे कम पे तो मैं मर कर भी बात तय ना करूं। एक एक लफ्ज चुबाकर बोलती वो वकार को जिज कर रही थी, मैं तुम्हारी चमड़ी उधरवा दूंगा। ये जानकर भी कि वो सीसीटीवी कैमरों की जद में है, ये मामा की बातों पर खुद को कंट्रोल ना कर सका। अभी तो चक्की पीसने की या तख्ता दार पर लटकने की तैयारी करो। मुझ तक आने के ख्वाब हुआ भी रहने दो, कंधे उचकाकर गोया उसे चैलेंज करते आईना दिखा गई। वकार चंद लम्हे शोले बरसाती नजरों से उसे देखता रहा, जैसे उसे नजरों से ही झुलसा देगा, मगर बेबसी के मारे कुछ कर ना सका, गुस्से से तनफुन करता निकल गया। यमामा ने सारी रिकॉर्डिंग बंद की और फौरन से पेशतर उसे अपने यूट्यूब चैनल पर इस हेडलाइन के साथ चला दी, मुल्क की लटेरों का एक और कारनामा। यस के बटन के साथ ही वो वीडियो वायरल होने को तैयार थी। वायरल होते ही सबसे पहला व्यूअर शहनशाह के नाम से था। ये मामा ने अजनबे से नाम पढ़ा, साथ ही उसके मोबाइल की स्क्रीन चकमगाई, हाथ बढ़ाकर साइट पर रखा मोबाइल उठाया, शाबाश मेरी चीती, किसी अजनबी नंबर से आने वाले जाने पहचाने अल्फाज पर वो दांत किचकिचा कर रह गई। सोनियों दांत इतनी जोर से ना भिंचो, एक दो टूट गए तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। अभी वो ठीक से गुस्सा भी ना कर पाई थी कि उसके एक और मैसेज ने उसे सीख पा कर दिया। कमीना कुछ सोचकर उसे एक लकब से नवाज दी। लैपटॉप की स्क्रीन गुस्से से बंद की, किसी से जिचना होने वाली ये मामा उस दहशतगर्द आशिक से जिच होकर रह गई थी। जुम्मा के दिन यमामा की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक फैसला आया। सरताज पर जितने काले धंधों के इल्जाम थे वो सब साबित हो चुके थे और उस पर 14 साल कहते बामुशक्कत आयद हो चुकी थी। जमानतों से मुतल्लिक सब अपीलें मुस्तरद कर दी गई थी। कमरा अदालत से ही सरताज को हथकड़ी लगाकर जेल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया था। वकार गुस्से में भरा बैठा था, समी भी उसके साथ वही मौजूद था। वो उसके कंधे पर हाथ रखे शरारबार निगाहों से यमामा को देख रहा था, जो इस वक्त केस जीतने की खुशी में सबसे मुबारकबादें वसूल कर रही थी। तुम फिक्र क्यों करते हो, कल ही इस फसादन का काम तमाम करवाते हैं, वो वकार के कान में घुस्सा उसे तसल्लियां दे रहा था, क्योंकि अब अगली बारी वकार और वहाज के जेल जाने की थी। कल हर सूरत मुझे इसकी मौत की खुशखबरी मिलनी चाहिए, वरना जेल तो जाना ही है, तो इसी के कत्ल से हाथ रंग कर क्यों ना जेल जाऊं। यमामा के फातहाना चेहरे को भस्म करने वाली नजरों से देखता हुआ बोला, पागल हो गई हो, अकल से काम लो, वो उसे खुरकने लगा। अकल खत्म करके रख दी है इस डायन ने। अब उन दोनों का रुख बाहर की जानिब था, जहां मीडिया दोनों को घेरे सवालों की बौछार कर रहा था और वो अभी भी डिटाई से अपना सच्चा और मासूम होने की झूठी गवाहियां दे रहा था। ये सब साजिश है हमारी फैमिली के खिलाफ, ये सब जज बिके हुए हैं। वो वही जुबान बोल रहा था जो बरसों से वो बाप को बोलते देखता आया था, झूठ और बस झूठ की जुबान, अपने गुनाहों पर पर्दा पोशी की जुबान। कुछ देर पहले ही वो फरहान और बाकी सब दोस्तों को अपने केस की एक कड़ी हल होने की सूरत में ट्रीट देकर आई थी। फ्लैट काले स्टाइलिश से जूते उतार कर गले में मफलर की सूरत लपेटा दुपट्टा सोफे के एक जानिब रखकर उसी पर ढेर हो गई। जिंदगी में पहली बार वो खुशी से किसी ट्रीट के लिए तैयार हुई थी। काले ही नेट के दीदा सेब कपड़े पहने, कानों में एंटीक ईयरिंग्स थे, बालों को पोनी से हटकर आज अच्छा सा हेयर स्टाइल दिया गया था। आगे से मांग निकालकर एक एक लट को ट्विस्ट की शक्ल देकर कानों के पीछे ले जाकर पिन से बांधा हुआ था और बाकी के बालों को लूज कर्ल्स डालकर खुला ही छोड़ा हुआ था। आंखों पर पहली बार लाइनर का इस्तेमाल किया गया था, थोड़ा सा अनाड़ी अंदाज में लगा था मगर उसका गुजारा हो गया था। पिंक कलर की लिपस्टिक अब भी उसके होंठ पर मौजूद थी, हल्की हो चुकी थी मगर फिर भी मौजूद थी। सोफे पर निढाल सी बैठी वो अभी तक सरशार थी, एक गहरी पुरसुकून सांस फिजा की सपुर्द करती। वो आंखों के किनारों पर अटकने वाले फूले भिसरे आंसू को बेदर्दी से अपनी आंख से मिटाती, जूते उठाकर अंदर रखने के लिए बढ़ी। क्या क्या और कौन कौन आज याद ना आया था, वो बेदर्द लम्हे किसी फिल्म की तरह उसकी निगाहों के सामने आज सारा दिन रहे थे, जिन्होंने उससे सब कुछ छीन कर उसे तपती धूप में ला खड़ा किया था, जहां से आगे बढ़ने के लिए उसके पास सिवाय अल्लाह की साथ और चंद मददगारों के सिवा कोई अपना ना था। इतने साल उसने क्या क्या ना झेला ये कोई नहीं जानता था। तन्हाई का अजाब बड़ा तकलीफ देह होता है और उसे ये अजाब सारी जिंदगी झेलना था, मगर अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के अजम ने उसे ये तकलीफ महसूस करने का वक्त कम दिया था। इसीलिए इतने अरसे बाद वो सब याद आए थे जो उसे पलक झपकने में तन तनहा कर गए थे। कमरे में पहुंचकर वो जो कुछ देर पहले बेहद खुश थी, यकदम पसंद मुड़ता सी हो गई। जूतों को अलमारी में रखकर अभी वो सीधी हुई ही थी कि डोरबेल बजी। वो हैरान हुई कि इस लम्हे कौन हो सकता है। कमरे से निकलकर सोफे पर पड़ा दुपट्टा कंधे पर डाला। कौन? दरवाजा खोलने से पहले अंदर से पूछा। उसके फ्लैट का आई हॉल चंद दिन पहले ही खराब हुआ था। उसने सोचा हुआ था कि आज की पेशी से फारिग होकर वीकेंड पर लगवा लेगी, लिहाजा इस वक्त वो दरवाजे के उस पार नहीं देख सकती थी। ये मामा है क्या? मुझे एक केस के सिलसिले में उनसे मिलना है, कमोपेश उसी से मिलती जुलती आवाज में एक लड़की बोली। ये मामा ने हैरत से वक्त देखा, 11:30 बजे कौन केस डिस्कस करने आ गया? सोचों से निकलते उसने दरवाजा खोला, मगर अपने सामने बिल्कुल अपनी शक्ल वाली लड़की को देखकर वो जितनी भी हैरत ज़दा होती कम था। हेलो ये मामा, उसकी हमशक्ल लड़की मुस्कुराते हुए ये मामा के हैरत ज़दा चेहरे को देखते हुए बोली। यकदम तेजी से अंदर बढ़ी, उसे भी अपने साथ खींच कर लाती। दरवाजा बंद करते ही उसके मुंह पर एक कपड़ा रख गई। ये सब इतनी अचानक हुआ कि ये मामा को संभलने का मौका भी ना मिला, और चंद लम्हों बाद वो अपनी हमशक्ल लड़की के बाजुओं में ढेर हो चुकी थी। सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द अना इलियास नॉवल धड़कनों का अमीन episode 1। सो प्लीज लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। थैंक यू।